काटी साथ छोड़ करके उनके पास में जाएगा, किनके पास में? तस्मात गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तम, उत्तम श्रेय को, उत्तम कल्याण कैसे हमारा होगा इसको पूछने के लिए वो देखेंगे, क्या कैसे शिक्षा उसको देंगे, देखेंगे ये प्रणति करता है कि तद्विधि तद्विधि परिपाते ना, सरेंडर करो पहले परिप्रश्न ना, इसके संबंध में प्रश्न करना पड़ेगा, तुम्हारा तुम्हारी बाधाएं कहाँ हैं, और सेवा इसे संतुष्ट होकर के वो गुरु जो हैं सप्त ब्रह्म को जानने वाले हैं, सप्त ब्रह्म में उनको कहीं भी संदेह नहीं है, वेद शास्त्र उपनिषद भागवत में जो लिखा है उसकी अनुभूति उनको है, ब्रह्म की अनुभूति है, कृष्ण की अनुभूति है, कृष्ण का भजन करके कृष्ण कैसे हैं, कैसे प्रिय हैं, उनमें क्या क्या गुण है, ये सब उनको रियलाइजेशन, और इसके वजह से उनको संसार से वैराग्य भी है। ये संसार क्या है? विषय है, विषय हुआ है विष से, विष से विषय, इसे कुछ लाभ नहीं हो सकता, केवल ये शिक्षा का आधार है, इसे सीख करके इसे निकलना है। इस चीजों की अनुभूति जो है जानते हैं खूब, किंतु अनुभूति नहीं है। आजकल ऐसे ही प्रचारक अधिक है, उपलब्धि नहीं है, कहीं से कुछ कुछ रसीली बातें इधर उधर की मनोरंजन की बातें लेकर कर लेते, अनुभूति रहती तो अनुभूति अपने शिष्य में दे सकते, इसलिए उत्तम महाभागवत हो, संसार से विरक्ति भी हो, भगवान की अनुभूति भी हो, शास्त्रों का ज्ञान भी, और वो व्यवहार में लगेगी, आचरण खुद करते हैं तब दूसरों को। इसलिए आज सवेरे हमने या कल भी हमने कुछ उदाहरण दिए गुरु शिष्य, लोगों की इस धारणा है जो एकलव्य शिष्य था और आदर्श, किंतु हम लोगों के गुरुजनों ने उसको शिष्य ही नहीं माना, विरोधी गुरु का द्रोही है, इसलिए उनके गुरु ने उनका अंगूठा काट लिया, अंत में इतना भी नहीं हुआ तो कृष्ण से वो लड़ पड़ा था, कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया। यदि वो गुरु सेवक होता है तो उसका ये सिर काटते कृष्ण, गुरु उसका अंगूठा ले लेते, जगह इससे जगत का अनिष्ट होगा, इसलिए उसने अपने गुरु जी से कहा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, ये पूछा, कुछ ब्रह्म ज्ञान कुछ भगवत भक्ति का ज्ञान उसको उनसे सीखा, जगत को ध्वंस करने का तरीका वो सीखना चाहता, इसलिए ये गुरु। सवेरे मैंने कर्ण का ये बतलाया, कर्ण का भी शिष्य नहीं है, परशुराम जी से छलना की, झूठ उनसे बात, मैं ब्राह्मण का बालक, और उन्होंने ऐसे ही कहा तुमने हमसे सारी विद्या सीखी, ठीक है सीख लो, किंतु अंतिम समय में इसको तुम भूल जाएगा जो व्यवहार का, बस अर्जुन के जीत के समय सारी वो भूल गया और अर्जुन के द्वारा मिला। इसे ऊपर थोड़ा सा हम लोग बढ़े, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई, शंकर शंकर जी के समान तत्व ज्ञानी भी, ब्रह्मा के समान ज्ञानी, कभी बिना गुरु का वो आगे ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं अरुणी नाम का कोई व्यक्ति उपनिषद काल में गुरु जी से शिक्षा लाभ कर, उन्होंने उनको पढ़ाया नहीं, अच्छा जाओ पहले घर की सेवा करो, 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखा, घर के कामों में लगा दिया, गैया चराओ, जो जो आदेश देते हैं उसको, हमारे घर में ही खाना दूसरी जगह मत खाना, जूता छाता मत लगाना, कोई भोग विलास का द्रव्य मत रखना, मत रखना। एक दिन रात में 12 बजे माघ के महीने में जब खूब ठंडक पड़ रही है, लगा
दीजिए, 5 मिनट
कीर्तन करा दूं
मैं, माइक लगा
दें, ठीक है लगा, महामंत्र का बहुत सुंदर सूर्यदेश्वर में
माइक।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस करें। मैं ये बतला रहा था गुरु तत्व के संबंध अरुण जी अपने गुरु के पास में गए। उन्होंने कहा जी अच्छा 12 बरस ब्रह्मचर्य रखकर के घर की सेवा करने लगे। एक रात जाड़े के दिनों में वर्षा हो रही थी, खूब जोरों से वर्षा। उन्होंने कहा जाओ अभी रात में हमारा खेत है उसमें मेड़ बांधाओ, नहीं तो पानी बह करके चला जाएगा तो उसमें धान की खेती नहीं होगी। चले गए, बहुत चेष्टा की पानी को रोकने के लिए, मेड़ बांधे, उदाल से मिट्टी लेकर के बांध रहे और धारा प्रवाह इतना जोश, आप लोग फिरता है ना धारण कीजिए, इसको छोड़िए, इसके भरोसा में मत रहिए। वो गाल से मिट्टी काट रहे हैं और पानी भर जाता है। बहुत चेष्टा की जब कुछ नहीं हुआ, अपने आप लेट गए, ऐसे ठंड से छुटूर गए कि अब शरीर में मानव स्पंदन नहीं। अब भोर होने को आया, पानी तो रुक दिया किंतु ऐसे जब प्राण निकले, कितने में सवेरा हुआ, हरिचंद्र के गुरु उनको सोचा अरे तू अरुणी कहाँ है कहाँ है, गुरु जी मैं यहाँ पर क्षीण स्वर से तुम यहाँ पर लेटा क्यों? तुमने कहा मैंने कहा था तुम मेड़ बांध करके चला ना, तो गुरु जी वो मेड़ नहीं बंध रहा था, वो बार बार कट जाता इसके लिए ना कर सकता। खड़े होकर के आशीर्वाद किया, जितनी सारी विद्याएं हैं जो हमको ज्ञान है वो सब उपनिषदों के एक वो गुरु उसका तत्व को उपदेश करता है। ये गुरु है उन लोगों से, ये श्रेष्ठ है, ये गुरु तत्व में आया कुछ किंतु अब हम सुना रहे हैं एक यथार्थ गुरु। उनको ज्ञान तो हुआ, उपलब्धि अभी नहीं है, उपलब्धि होने से ही संसार उसका दूर हो जाएगा और वो मुक्ति पथ को पाएंगे, बस इतना ही तक होगा, मुक्ति तक जाएंगे। इधर देखिए महाप्रभु के समय एक राजकुमार बहुत ही सुंदर धनी घर का लड़का, बहुत धनाढ्य है, एक हरिदास ठाकुर नाम के एक संत वहां आया जा करते थे, बहुत प्यार करते उस बच्चे को, बस हरि नाम करना सिखाया जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वो बच्चा कौन था? रघुनाथ दास मिश्रा, जो 300,000 हरि नाम करता है, चित्त कहीं नहीं भटकता, बस कपड़े बस यही करते हैं लंगोटी। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय, इसे भी ऊपर चले गए, दिन रात भजन में मस्त है, उनका चित्त कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। अब ऐसा गुरु मिला और उनको हिरण करने से, और अद्वैताचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था जदुनंदन आचार्य। हरदास ठाकुर किसी को दीक्षा नहीं देते थे, वो जदुनंदन आचार्य बहुत बड़े भारी भक्त थे, उन्होंने इनको दीक्षा दी गोपाल मंत्र और वो काम गायत्री इत्यादि जो हम लोगों की परंपरा धारा में चला रहा है, वो उनको मंत्र से दीक्षा, मंत्र मूर्तिमान होकर के अंदर में प्रवेश किया और अपना प्रभाव दिखलाने लगा। पहला हम क्या चीज देख सकते हैं, ऊपर शरीर से जो कुछ होगा उसी को हम देख सकते हैं, अंतर में क्या हुआ ये तो देख नहीं सकते, कितना प्रेम हुआ कितना क्या हुआ उसकी वृत्ति कैसी रही है तो दिखाई नहीं पड़ रही, ये ऊपर से देखा गया जो उनको संसार से विरक्ति हो। अब अच्छे खाने पीने इत्यादि में उनकी रुचि नहीं रही, भोग विलास में रुचि नहीं, हम इसी को संत मान लेते हैं, किंतु ये अभी संत में अभी नहीं पहुंचे। ऐसे तो बहुत से बंदर भी मिलेंगे जिनको घर द्वारा जाना ही है, खेती नहीं करते, विवाह नहीं करते, किंतु उनको साधु नहीं कहा जा सकता। इसलिए वैराग्य ऊपरी चीज है, गीता में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम हुआ है इसके इसको देखना, ये ऊपर से देखा नहीं जा सकता। जब दुनंदन चार उसी तरह के आकर उन्होंने उनको शिक्षा दी, धीरे धीरे लड़का भी बड़ा होने लगा, विद्वान भी होने लगा, संस्कृत इत्यादि उस समय की जो थी और बंगाल बंगला था वो बढ़ने लगा, और धीरे धीरे उसकी भक्ति भी पुष्ट होने लगी। एक दिन वो घर से निकल करके महाप्रभु जी के पास में पहुंचा शांतिपुर, जिस समय चैतन्य महाप्रभु घर बार छोड़ करके संन्यास ले करके और वहां से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में भेंट हुई शांति। ये जिद करने लगा बच्चा जी, मैं आपके साथ में रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा और भजन करूंगा। महाप्रभु जी ने उसको समझाया, अभी बचपन मत करो, स्थिर हो या जा घर ना हो वो बातों, पागलपन मत करो, अभी घर में जाओ, अपना जो लोग व्यवहार है ये ठीक रखो और कृष्ण की प्रति जो निष्ठा है अंतर में रखो, बाहर में जो व्यवहार लोगों के साथ में है वो ऐसा ही करो, और भीतर में कृष्ण के प्रति निष्ठा जिसको और लोग नहीं देख सकते, तुम्हारी निष्ठा और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ कर। लोग व्यवहार क्या, माता पिता का आदर करना और जो व्यवहार है कर्तव्य है उसको सब। भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, अच्छा मत खाना, वो विलास की चीजें तरह तरह की डेलिशियस फूड खाना, यदि भजन करना चाहते हो भगवान को प्राप्त करना, और भालो ना परिबे और अच्छे कपड़े इत्यादि मत पहनना, सूट बूट पहनेगा तो ठाकुर जी को प्रणाम करने में तुमको लज्जा आएगी ना, सूटेड बूटेड बूट बूट पहने हैं, बूट खुलने में गड़बड़ हो, चप्पल पहने खोलते, धोती धोती सात्विक चीज सहज रूप में उसको थोड़ा सा आधा ओढ़ लो भी आधा पहन भी लो, शरीर बदन ढीला रहेगा, बैठ भी आसानी से सकेंगे, जिनका कड़ा पैंट है वो बैठ नहीं सकते, इसलिए इसमें सहायक। तो भालो ना परिबे, अच्छा मत खाना, आज बाजार में सबसे अच्छा स्वादिष्ट आम कहाँ पर है, किस दुकान में, ये खोजते खोजते सवेरे से शाम तक मत लगाओ, और चमचम किस दुकान की अच्छी है, वजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे तरह के भोग विलासों में मत पड़ना, भालो ना खाइबे भालो ना परिबे, इसके इससे सभी चीजों को समझ ली। और अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा लोगे, अमानी मानद मान क्या, अपने मन की लालसा मत करना, मान अपमान को बराबर समझना, तुमको किसी ने गाली दे दिया, गाली थोड़े आकर के तुम्हारे यहाँ पर छेद किया किंतु छेद हो जाता है, हाथ से थप्पड़ मारो या किसी को किसी से कोई चीज कर दो उसको भूल जाते हैं, किंतु बात की जो बात का जो वर्ण होता है ना वो सहज ही नहीं जाता, इसलिए भजन में सबसे बड़ा ये विरोधी है। इसलिए मान अपमान को बराबर समझते हुए और जैसा मैंने कहा इसी प्रकार से घर में जा करके भजन करो, ऐसा करने से धीरे 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 भगवान में रुचि आएगी, अब भगवान व्यवस्था करके सहज ही तुमको भव सागर पार करा और अपने में रुचि लगाएगी, भव समझा बुझा करके घर में। अब वो जो भाग रहे थे भागना छोड़ दिया, पहले बड़ी सुंदरी स्त्री से उनकी शादी हो गई थी, माता पिता ने कर दिया, ये भाग रहा है स्त्री का स्नेह मिलेगा, बड़ी सुंदरी स्त्री आएगी इसको बसीभूत कर लेगी, किंतु कोई अंतर नहीं। अब सबसे बातें कर रहे हैं पिताजी से, घर का काम जो है राज्य इत्यादि देखना सुनना ये सब ये करने लगे, किसी को समझने नहीं दिया, और अंदर अंदर में क्या होने लगा, कृष्ण के प्रति हरि नाम सब समय कृष्ण चिंतन, और ऐसे ही ग्रंथों का ये सब अनुशीलन करने लगे पढ़ने लगे, जिससे कृष्ण के प्रति धीरे धीरे अब रोक नहीं सकते। नित्यानंद जी महाप्रभु के बड़े भैया रूप में समझ लीजिए, अखंड गुरु तत्व को समझिए। उनको होश नहीं शरीर का, सबसे में उनको होश ये जो मैं बलदेव हूँ और कन्हैया कृष्ण, बस इसी में। कभी बचपन में जैसे रहते थे अपनी यहाँ की राज्य उत्तरीय उसको बहिर्वास को ले लिया, होती नहीं बहिर्वास, और उसको यहाँ पर सिर पर बांध दिया, नंगे हो गए। और सची मैया है, मालिनी देवी है, उनकी गोदी में बैठ करके 25 26 या 28 29 वर्ष के नौजवान और उनकी गोदी में बैठ गए, उनका स्तन पीने लगे। होश नहीं जमे, कौन हूँ कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण के भावना में गौया चराने के लिए जा रहे हैं, कहीं से एक बंसी ले लिया, एक लकड़ी, और उसी बंसी को ही लकड़ी को बंसी भाव में भी दिन रात उसी के चिंता में तन्मय। ये भजन का ये एक दिन उनसे भेंट हुई, उन्होंने उनके सिर के ऊपर में अपना पैर रखा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जितनी विपत्ति आपत्तियां मैंने सबको ग्रहण कर दिया, अब तुम अपना सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान का भजन करो, जो बाधाएं हैं मैंने दी। घर लौटे, घर लौटने के बाद और इतना विरह कृष्ण के प्रति हुआ जो अब संभाल नहीं सके, दिन रात तड़पने लगे कृष्ण से मिलने के लिए। यदि कोई विरह में तड़पे तो उसके कौन कृष्ण कैसे रह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो भी तड़प, ये जितना तड़पते हैं उससे अधिक कृष्ण को हृदय में तड़पन होती है, कैसे अपने पास मिले हम। एक दिन उनके गुरु जी का कोई शिष्य था जो उनके पास में अर्चन बंदन करता था, अर्चन ठाकुर जी का, वो कहीं किसी काम से आया नहीं, दो तीन दिन नहीं आया, गुरु जी को कुछ असुविधा हो रही है। वो इनके पास में भोर में 4 बजे आए, बेटा रघुनाथ वो आता नहीं, उसको तो शासन कर दो, उसे डरा धमका दो, कोई सिपाही को उसके पास में भेज दो और वो उसको शासन कर दे, या तुम ही खुद ही शासन कर दो, जैसे हमारा काम अर्चन का वो काम करता है। और जी आप कोई बात नहीं, आप घर जाइए, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। और उसी रात में निकल, दिन रात उनके ऊपर में पहरा रहा था। मैया ने कहा जी इसको बेड़ी लगा करके और हथकड़ी लगा करके रख दो घर में। पिताजी ने कहा जिसको कृष्ण की नज़र लग गई, जिसको कृष्ण से मिलने की तड़फन आ गई, उसको बेड़ी और लोहिया ये क्या कर सकता है निर्जीव, हमने इसको बांधने के लिए सजीव बेड़ी दी, वो बेड़ी क्या
पत्नी,
खूब सुंदर पत्नी दी, जिसको माता की ममता नहीं बांध सका, पिता का स्नेह नहीं बांध सका, स्त्री का प्रेम नहीं बांध सका, उसको कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता, रसी क्या बांध। तो अभी पहरा उनको रखा गया था, किंतु आज रात में 4 बजे निकले, उस ब्राह्मण के पास में गए, शिष्य के पास में, उसको कहा जल्दी से जाओ नहीं तो तुमको शासन कर लेंगे, डरा धमका करके चले गए और वहीं से जगन्नाथपुरी चले गए। जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे महाप्रभु की विराट सभा लग रही थी, उसमें स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, गदाधर पंडित, हजारों लोग, बड़े बड़े भक्त लोग उसमें महापुरुष हैं। दूर से राजकुमार, अब वो जैसे गुलाब मुरझा जाता है, 11 दिनों तक कुछ नहीं खाया, कहीं पानी मिल गया, पिक मिल गया, दिन रात चला, जो कभी आज तक चलना नहीं जानता, और भूख प्यास से कहीं कुछ कोई दे दिया तो वो खा लिया, सत्तू पत्तू जैसा मुड़ी।
एक महीने का रास्ता 12 दिन में
उसने तय कर दिया पैदल,
और 3 दिन पर कुछ भोजन मिला,
और उसमें 3 दिन केवल कुछ कुछ लिया। जिसको लगन लगती है तो ऐसे लगन लगती है, इसको कहते हैं लगन, ऐसा लगन हो तो देखो, तो जरा वजन करो अपनी लगन और उनकी लगन, तो उनको क्यों नहीं मिलेंगे, हमको क्यों नहीं मिलते हैं, अपनी लगन को विचार करके देखो। ऐसी लगन मीरा को लगी, ऐसी लगन
मीरा हो गई मगन,
मीरा हो गई मगन, और फिर ऐसा लगन होना चाहिए, मीरा को भी ऐसी लगन, और रघुनाथ दास को उससे कुछ अधिक लगन लगी। पहुंच गए, महाराज प्रभु जी को प्रणाम किया, तब तक केस बढ़ गए हैं, धूल धूसरित हो गए, कोई स्नान नहीं किया 11-12 दिनों में, बिना खाए सूखे हुए रूखा शरीर, जब प्रणाम किया महाप्रभु जी, आज तुमको कृष्ण ने तुम्हारे पैखाना के टट्टी से, टट्टी के गर्त से, कुएं से निकाल करके आज तुम्हारे पास में पहुंचाया। उस दिन तो मना किया था, क्यों? इसलिए कि उनका वैराग्य अभी परिपक्व नहीं था। और आज देखा जी, अब जब सब छोड़ करके निश्चिंत होकर के आ गया, उन्होंने ग्रहण कर दिया और स्वरूप दामोदर वहीं पर बैठे थे। वो ललिता जी के अवतार, ललिता जी उनके कर कमलों में उनका हाथ लेकर के रख दिया। आज से तुम्हारे ये गुरु हुए, तुम इन्हीं से सीखना पढ़ना और इन्हीं से भक्ति सीखना। दामोदर जी अपने साथ ले गए और उनको कैसे कृष्ण मिलते हैं, प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्था तक, सर्वोत्तम उद्देश्य जीवन क्या क्या होना चाहिए भक्तों का और कैसे वो पूर्ण होता है, सब उनको सीखा। भागवत का तात्पर्य हमारे भक्ति स्वामी सिंधु और उज्जल नीलमणि जो रूप गोस्वामी के ग्रंथ हैं, सनातन गोस्वामी का जो बृहद भगवतामृत है, गोपियों का कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम था निश्चल बिना किसी स्वार्थ का, इन सबकी शिक्षा दी, ये गुरु का कर्तव्य है। केवल मंत्र ही नहीं, इसी की शिक्षा है जो देशदास जिसके आचरण को अपने हृदय से ग्रहण कर लेता है वो गुरु है और वो शिष्य है। रघुनाथ जी अब उनकी अवस्था भी गजब की हो गई। पहले वो वहां पर एक बाजार होता है जिसको आनंद बाजार कहते हैं, उसमें ठाकुर जी का उतरा हुआ प्रसादी, चावल, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, पकवान, ये सब बिकते हैं कम मूल्य में। पहले था 2 रुपये का खरीद लिया तो 10-15-20 आदमी पूरा भोजन कर लेगा, अब उसे कुछ मूल्य बढ़ गया है, किंतु अभी भी और जगहों से सस्ता है। जगन्नाथपुरी आनंद बाजार में ये बिकता है। चले जाते वहाँ, लोग क्या करते हैं, खरीद लिया कुछ, देखते हैं कोई साधु संत या कोई भूखा है तो उसको भी खिला। आज से 500 वर्ष की बात पहले कह रहा हूँ, अभी भी वहाँ पर जाओ तो भूखे नहीं रह सकते, कोई ना कोई जरूर ऐसा मिल जाएगा जो खिला देगा। तो वहीं से ही वहाँ पर खड़े हो जाते, कोई उनको खिला देता, फिर चले आते। इतने में उनके पिताजी ने खबर लगाया जब वो तो पूरी पहुंच गया है महाप्रभु जी के पास में, तो जैसे ये धन संपत्ति क्या होगी, कौन देखेगा। अब जैसे तैसे उसको किसी प्रकार से लोभ दे करके जैसे तैसे फिर लाना है, या वहाँ ही है तो वहीं पर सुखी हमारा पुत्र है। बस एक ब्राह्मण को, एक रसोईया को भेजा और उनके साथ में कुछ रुपये दे दिए। उस समय समझिए 2-4 आने में 1 मन चावल, 2-4 आने में 1 किलो घी, 2-1 आने में कपड़े लत्ते सब मिल जाते थे। उसमें जीविका निर्वाह खूब सरल सा। वो लोग इनके पास में आए और कहा, जे देखो तुम्हारे पिताजी ने भेजा है हम लोगों को, तुम अपने खाने लायक इतना पैसा ले लो और यही ब्राह्मण ये रसोई बनाएगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम यहाँ पर केवल खा लेना 2 बार और तुम भजन करो, तुमको घर जाने की जरूरत। महाप्रभु जी की तरफ ये देखने लगे, महाप्रभु जी ने कहा, जे हाँ ले लो, कोई बात लेना नहीं है, इन्हीं के पास में रहेगा, तुम सवेरे शाम को साधारण रूप में उसी से ये लोग रसोई बनाएंगे और तुमको खिलाएंगे, तुम खा लेना और हरि नाम करना और हमारे पास में रहना। मान लिया, 2 दिन किया, इसके बाद में नहीं। महाप्रभु जी ने कहा, जी उसका जीवन कैसा चल रहा है, शिक्षा दीक्षा कैसे, ठीक चल, खाना पीना कहाँ का करता है, उसको आनंद बाजार में मैं कभी कभी देखता था, आजकल देखता नहीं, वो आनंद बाजार अब छोड़ दिया, वहाँ नहीं जाता। इसके बाद में पिताजी ने भेजा था, वो उसको भी नहीं खाता, अब तो भिक्षा मांग करके किसी प्रकार से चला लेता। अरे पिता माता ने जो पैसे भेजे थे वो क्यों नहीं लेता। ये विषयी लोगों का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है, उस मलिन चित्त से फिर हरि भजन नहीं होता, समझे। विषयी लोग जो हैं, जो विषय में जिनकी लालसा है, जो धन को, संपत्ति को, प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान रखा है और भगवान की उपासना भी करते हैं तो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, सांसारिक झमेलों को शांत करने के लिए जो भजन करते हैं, ये लोग विषयी होते हैं। ऐसे विषयी लोगों का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है। उदाहरण क्या, भीष्म पितामह जी परम धार्मिक थे, किंतु कौरवों का दुष्ट अन्न खाने से उनकी बुद्धि पर असर पड़ा और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और द्रौपदी उनके तरफ में देख रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना को नहीं सुना और ऐसे सीख। पीछे से द्रौपदी ने उनसे पूछा, महाभारत युद्ध होने पर के होने के बाद में जिस समय वो मरने के लिए बैठे हैं अंतिम, उन्होंने पूछा ये आप तो इसमें पांडवों को और कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका यह उपदेश कहाँ गया था, ये उपदेश दुर्योधन को, कर्ण को, दुशासन और शकुनि को क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा जैसे मैं उस समय दुष्ट लोगों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था, मैं नहीं कर सकता था, मैं डरता था उस समय, इसलिए यदि भजन करना है तो विषय का अन्न नहीं खाया जाए, विषय का अन्न खाने से ही बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी, भजन नहीं होगा। इसलिए माता पिता ने जो भेजा था, उसके पिताजी कैसे हैं, एक होता है विषय प्राय, एक होता है वैष्णव प्राय। विषय प्राय कौन है, ज्योतिषी महाराज जी, पांडव लोग, द्रौपदी, ये सब
कुंडली विद्या निधि,
ये सब विषय प्राय, माने देखने में विषय किंतु विषय नहीं, भगवत भक्त, भोजन कर रहे हैं, स्त्री बाल बच्चों के साथ में हैं, किंतु उनका प्रेम कहाँ है, कृष्ण में। ये लोग विषय के समान दिखने पर भी विषय नहीं है, ये कृष्ण के परम भक्त हैं। और एक होता है वैष्णव प्राय, देखने में वैष्णव, जैसे गले में माला, यहाँ पर तिलक, सब कुछ है, किंतु विषयों में ही रुचि है, भगवान कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं है, केवल दूसरों को ठगने के लिए राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, किंतु वो क्या चाहते हैं, हमारा धन बढ़े, हमारी संपत्ति बढ़े, और आरोप सिद्धा भक्ति में ही तन्मय रहते हैं, भक्ति से कोई उनका संपर्क नहीं, ऐसा काम करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, जगत में ऐसा किसी ने नहीं किया जैसा हमने किया, प्रचार भी करेंगे भक्ति का कुछ भी अपने प्रशंसा के लिए। ये लोग हैं कैसे, ये वैष्णव पर देखने में किंतु वैष्णव, जो कोई देखे नहीं देखे अंतर से कृष्ण के प्रति अनुराग हो, इस चीज की आवश्यकता है, इसलिए उसने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब क्या करता है, वो सिंह द्वार के सामने बैठ करके खड़ा रहता है और कोई आया तो कुछ को प्रसाद दे दिया बस। कुछ दिनों के बाद में स्वरूप दामोदर से पूछा महाप्रभु जी अब क्या करता है, तो सिंह द्वार पर भी अब खड़ा नहीं होता, जहाँ पर ठाकुर जी के लिए अन्न बनता है प्रतिदिन हजारों मन, नहीं तो 500-700 मन बनता है, अभी भी जगन्नाथ जी अन्न बनता है तो उसका माण गिरता है, तो माण से कुछ चावल गिर जाते हैं, इस तरह से वो गायों के लिए वो नाली से बह करके जाता है, उस गाय खाती हैं, उसमें कुछ बासी भी रह सकता है, बस उन्हीं को, जबकि गायें खा लेती हैं, हट जाती हैं, तो उन्हीं में से अंजलि से उसे छान कर और रख लेता है, उसको पानी से धो करके सड़े हुए भाव को दूर कर देता है, कुछ नमक लगा करके दो एक ग्रास खा लेता है, जीवन निर्वाह। अब भिक्षा नहीं मांगता, किस लिए भिक्षा नहीं मांगता, ये वेश्याओं का काम है, ये व्यक्ति आएगा तो भिक्षा दे, ये आदमी पैसा देगा, ये भिक्षा वृत्ति में नहीं, ऐसे रह करके भजन करते थे, कभी रात में एक घंटा सोया कभी उभी नहीं, कभी चना सूखा चना कभी उभी मना, भजन करने के लिए ऐसा होना चाहिए, डेल्सेस फूड कहाँ मिलेगा, राबड़ी कहाँ मिलेगी, कपड़े अच्छे कहाँ मिलेंगे, अच्छी घड़ी रहनी चाहिए और सब चीज फैशनेबल स्त्री किया हुआ ये कपड़े रहने चाहिए, तो ये भजन क्या कर सकेगा, जहाँ तक हो सके इससे निरपेक्ष होकर के शुद्ध रूप में उसका चित्त भगवान में लगे तो भगवान का भजन, अंत में किसी प्रकार से जीवन धारण करके भजन। एक दिन महाप्रभु ने देखा, अच्छा तो देखो तो वो क्या करता है, गए देखा जे वही सड़ा गला हुआ अन्न ले आए चावल और उसको धो करके थोड़ा सा नमक दिया और पहला ग्रास उठाने के लिए चेष्टा कर रहे थे, इतने में महाप्रभु जी आए और पकड़ करके उसको ले लिया, एक मुट्ठी खा गए, यही दूसरा खाने लिया उनका हाथ पकड़ लिया, इतने स्वरूप दामोदर जी आ गए, समुद्र ने उनका हाथ आपके लिए, आपके लिए तो द्वारका का ये 56 प्रकार का ये व्यंजन और ये सब पड़ा है। अजी इतना तुम सुंदर खाता और हमको नहीं देता, उनके लिए तो अमृत है, हम लोगों के लिए 20 हो जाएगा, एक दिन में कॉलरा हो जाएगा, हमारे लिए जरूरत नहीं। किंतु उनका आदर्श कितना भजन, जो भगवान के भजन करने के लिए खाना पीना पहनना सब कुछ छोड़ करके उनमें तन्मय हो रहे हैं। और भजन कैसा, दिन रात आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। यह है कौन, राधा जी की खास सेविका है यह रति मंजरी। कैसे राधा जी की सेवा करते हैं, जब राधा जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाप्रभु के प्रकट के बाद में ये चले गए वृंदावन, रूप सनातन से मिले। रूप सनातन ने इनको अपने गले से लगा लिया और अपने छोटे भाई की तरह इनका पालन पोषण किया। आए थे मरने के लिए, महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, अब मैं कैसे जीवन धारण करूंगा, इसलिए गोवर्धन के पर्वत से वहां से गिर करके ब्रज में ही मरेंगे, या ब्रज की मिट्टी में हमारी मिट्टी मिल जाए इसलिए आए थे, या जमुना में पानी होगा तो उसमें डूब मरेंगे। तो जमुना का पानी भी अब धीरे धीरे सूख रहा है और गोवर्धन भी धीरे 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 नीचे चले जा रहे हैं। और इधर में रूप सनातन जी ने उनको पकड़ लिया, पकड़ कर यदि मरने से ही भगवान का भजन हो जाता, मिल जाते, तो हम लोग 10 बार रोज मरते। मरने से भगवान नहीं मिलेंगे, आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, प्रेम से ही एकमात्र मिलेंगे। ये प्रेम हृदय में प्रकाशित करो, उनके प्रति ममत्व हो और भजन करो। भागवत में गोपियों ने कृष्ण की जैसी आराधना की है, कैसी आराधना की, और की तो बात छोड़ो, कृष्ण ने कहा सरोवर से निकल आओ, जमुना नदी से नंगी आ जाओ। क्या किया उन्होंने, उस लज्जा को भी छोड़ दिया, और की तो बात किया। ऐसे कृष्ण में तन्मय हुआ जाए, कृष्ण का प्रत्येक आदेश उस रूप में माना जाए, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जित देखो तित श्याममयी है, ऐसी भावना, श्याम ही श्याम सर्वत्र नजर आए, राधा राधा जी सर्वत्र नजर आए। रघुनाथ जी स्वामी का ऐसा ही महाप्रभु, दोनों ने रूप सनातन ने उनके लिए राधा कुंड का स्थान दिया, ये तुम यहाँ रह करके भजन। बाघ आ रहा है पानी पीने के लिए, और बाघ और बाघ और भी घाट के पास में बैठे हैं तन्मय होकर के, इस प्रकार से बैठ गए। कुछ भी अच्छा धन नहीं, कोई हमको तो ये भी है ये भी है, उनकी एक लंगोटी आदेश, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है, राधा जी की सेवा में तन्मय है। आठों प्रहर की लीलाओं में एकदम तन्मय रहते थे, सवेरे का सवेरा निशांत लीला, इसके बाद में प्रातःकालीन, इसके बाद में पूर्वाह्न लीला, दोपहर की लीला, फिर अपराह्न, दोपहर के बाद में तृतीय पहर वाली, फिर सायं की, और फिर इसके बाद में प्रदोष की और मध्य, दिन रात उसी में तन्मय रहते थे। कुछ खाते पीते नहीं, इतना सा मट्ठा ले लिया एक छोटे से दोने में, और बस ले लेते थे दिन रात, बस वही दिन रात उसी, हजारों बार दंडवत करते थे अभिनंद गांव के लिए, बरसाना के लिए, राधा कुंड के लिए, कृष्ण के लिए, राधा जी के लिए, ललिता जी के लिए, विशाखा के लिए, नंद बाबा यशोदा जी के लिए, कहा कहा करके और दंडवत प्रणाम करते थे। दिन रात भाव में मग्न रहते थे, खाने पीने की चिंता नहीं, किसी से बातचीत करने की फुर्सत नहीं। हम लोग कभी हरिनाम की माला ले लेते हैं तो बैठ करके तो कर नहीं पाते, चित्त लगता नहीं तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, देखते हैं किसी को तो दो गाल मार लेते हैं उनसे, कभी कुछ खा भी लेते हैं, कभी माला रख करके और बातचीत भी करने लग जाते हैं इधर उधर की। एक दिन एक बड़े दोने में कोई व्यक्ति एक लाया जो प्रतिदिन देता था उनको मट्ठा, आज बड़े दोने में आया तो उन्होंने पूछा जी ये दोना कहाँ से लाया, तो सखी स्थली से ले आया, सखी स्थली माने चंद्रावली जी के, चंद्रावली के यहाँ से ले आया, राधा की विपक्ष हैं, बस एक लठिया थी उसको उठाया और मारने दौड़े। रति मंजरी के आवेश में और प्रतिपक्ष की सखी जान करके उसको पुरुष के रूप में नहीं देखा, वो समझ नहीं सका, साधारण आदमी नहीं समझ सकता किस भावना से उन्होंने ली, वो तो भाग गया। इसके बाद में इनका आवेश खत्म हो गया तो इनको कुछ पश्चाताप से, इस प्रकार से राधा कुंड में दिन रात रह करके, मैं राधा जी की सहेली, मैं रति मंजरी हूं, इस भाव से दिन रात भाव में। इसके बाद में जो जो भावनाएं आती ना उसको लिख लेते, जो उन्होंने स्वर्ग दामोदर से शिक्षाएं पाई थी, जो महाप्रभु जी से शिक्षाएं पाई थी, जो रूप गोस्वामी से शिक्षा पाई थी सबको, उन्हीं के शिष्य हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्हीं से सब कुछ लेकर के चैतन्य चरितामृत। जो आधुनिक चैतन्य चरितामृत है ये क्या चीज है? रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में जो लगी हुई थी, जो उतना भावनाएं थी हृदय में, जो भावनाएं थी उसी को उन्होंने प्रकाश करके अक्षरात्मक रूप में उस चीज। यदि कोई इसको पढ़ेगा, इस पर आचरण करने की तो बात ही क्या, यदि पढ़ेगा भी उनकी भावनाएं यदि आ गई बहुत जल्दी प्रश्न उठेंगे। उन्होंने ये सब पद्धतियां बनाई, पहले किसी साधु से संग होगा, संग होने पर क्या होगा, उसके अंदर में कुछ भाव आएगा, मैं भजन करूंगा, फिर उनके कहने से किसी शुद्ध गुरु को करेगा, गुरु जी की ऐसी सेवा करेगा, कैसी कि संभरु, कोई अंतर नहीं, केवल दूर से प्रणामी नहीं, उनकी जितनी प्रकार की सेवा है, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी करते थे स्वरूप दामोदर को, जैसे ईश्वरपुरी पाद जी करते थे माधवेंद्र जी को, ठीक ऐसी सेवा प्राण से लेकर के, कोई जैसे बंधुवत सेवा होती है निर्भीक होकर के, जब जरूरत होगी उनके पलंग पर बैठ करके उनकी सेवा करेंगे, जैसा चाहते हैं वैसा ही करें, इसको कहते हैं विश्वम्भर सेवा। और एक होती है मर्यादा का ध्यान रखते हुए संभ्रम भाव से, संभ्रम माने क्या, प्रणाम करेंगे दूर रहेंगे, हनुमान जी की राम की सेवा है वो संभ्रम, और सखाओं की सुदाम सुबल इत्यादि की और गोपियों की सेवाएं कैसी हैं, यशोदा जी की विषम है, कृष्ण को शासन भी करती हैं आवश्यकता पड़े, उनका कान भी ऐंठ सकती हैं, कौशल्या जी देवकी जी ऐसा नहीं कर सकती, इनके लिए संभव नहीं, इसलिए गुरु जी के प्रति अपना परम बंधु जान करके विषम्भ पूर्वक उनकी, मैं उनका हूं वे मेरे हैं, ऐसी सेवा करते 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 और उनके उपदेशों को धारण करते 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 धीरे धीरे हमारा हमारी श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से धीरे 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 अनर्थ दूर होने लगेंगे। अनर्थ माने क्या, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, कृष्ण का तत्व ज्ञान अपने आप आता जाएगा, कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे ये सब भावना आने लगे, और जितनी प्रकार के कृष्ण के भजन में बाधाएं वो सब दूर होने लगे, तब उसकी निष्ठा होगी, प्राण जाने पर भी भगवत भजन नहीं छोड़ूंगा, इसके बाद में रुचि आसक्ति, इसके बाद भाव, इसके बाद ये साधारण से विधि है। इस तरह से हम लोग धीरे 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 बढ़ेंगे। हम लोगों को यदि भजन करना है तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे, गोपियों जैसा कृष्ण की सेवा करना है, एक उद्देश्य हमारे जीवन का एक ध्येय बना लेने, हमारी भज हम कैसे हमारी कैसे कृष्ण के प्रति संबंध होंगे, हमारी सेवा कैसी होगी, इस प्रकार से अभी से बना करके अभी से हम चलेंगे साधन में, साधन में जैसा होगा सिद्धि भी उसी तरह से होगी। जिस प्रकार से भरत जी ने मरते समय में हिरण की चिंता की तो हिरण हो गए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी अनुसार में मरने के समय में चिंता आएगी, और मर करके वैसा ही शरीर, हमको ऐसा करना है जी ऐसी चिंताएं नहीं आए, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो और उन्हीं का नाम निरंतर बना रहे, गुरु जी की सेवा कर सकें, संतों की सेवा कर सकें, उनकी वाणी की सेवा कर सकें, धीरे धीरे हम लोग और कोई दूसरी तमन्ना ना हो, हमारी खूब प्रतिष्ठा, ऐसा काम करेंगे जगत भी देखेगा, जगत ऐसा करो जिससे तुम्हारे अंदर में प्रेम बढ़े और तुम्हारे संपर्क से दूसरों में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो और कोई लालसा ही न रहे, इसको सर्व सिद्धा भक्ति कहते हैं। ऐसे हम लोग आज यहीं तक रहे, ये कीर्तन और आरती करते छोड़ते, वहां पर जो भाषण दिया था कल यदि होगा तो वहां पर बतलाएंगे, प्रश्न तो कर लीजिए।
आपने कहा था वहीं जाके प्रश्न दे दिया, प्रश्न ये था कि हम हमारी भक्ति जो है वो किस तरह से बढ़ती है, गुरु के संग से, आपने कहा था गुरु के संग से बढ़ती है, वैष्णव के संग से बढ़ती है, या हम जो भजन की प्रक्रियाएँ करते हैं उससे बढ़ती है, गुरु का संग भजन की प्रक्रिया
ठीक है मैडम।
रामचंद्र जी के बाद में जो फिर नवमी आएगी वो चैत्र के महीने में हुई थी, ये बैसाख महीने में, ये शुक्ल पक्ष को ये हुई, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये नवमी है। ये सीता जी की आविर्भाव तिथि, और कृष्ण जी का जब आविर्भाव है ना तो उनके 15 दिन बाद में नेक्स्ट 15 दिन बाद राधाष्टमी होती है, अर्थात कृष्ण से राधा जी 15 दिन छोटी, और ये सीता जी रामचंद्र जी से एक महीना अंतर हुआ, अभी रामनवमी
एक महीना
हो गया, महीना
डेढ़ महीना
हो गया,
9 अप्रैल थी तो आज
मई है,
एक महीना
रामचंद्र जी से ये छोटी हैं। और आज मैंने लोधी रोड पर इसके संबंध में सुना है सब खत्म इसके संबंध में कुछ बतलाया था, सीता जी का आविर्भाव कैसे हुआ फिर से संक्षेप में बतला दिया, शायद पहले बतलाया कि नहीं मुझे याद नहीं, बतलाया पहले जनकपुर में 2-1 वर्षों से अनावृष्टि हुई और बरसाती नहीं हुई, चारों तरफ में तहलका मच गया, पानी नहीं, तालाब सरोवर नदियां सभी सूखने लग गए, हाहाकार मचने लग गया। राजा जनक में ने एक मीटिंग की, उसमें साधु संत ब्रह्मर्षि इत्यादि को बतलाया जो सर्वज्ञ भी हैं और जिनकी प्रार्थना भगवान सुन भी सकते हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की। राजा के पाप से अनावृष्टि इत्यादि होते हैं, शायद मेरा कोई पाप हो गया, आप लोग का एक प्रायश्चित बतलाइए और कैसे वृष्टि हो प्रजाओं का हित हो। उन्होंने कहा आप हल चलाइए, अभी हल तो चलाया नहीं, और आपकी रानी हल को खींचे, हल में जहाँ पर बैल लगते हैं वहां पर आपकी पत्नियां लगेंगी और हम लोग वेद उच्चारण करेंगे, वेद मंत्र उसमें प्रार्थना करेंगे इंद्र इत्यादि से जो वृष्टि हो, और महिलाएं गीत गाएंगी, सब महिलाओं को बुला दिया जाए, वहां पर जितनी महिलाएं थी सब आई, ब्रह्मर्षि लोग भी, ऋषि महर्षि सब लोग उनके साथ में चले और एक स्थान को पवित्र देख करके और उसमें सोने का हल बनाया गया, उसमें सोने का फाल लगाया गया, फाल माने जिसे वो जोतते हैं, लोहे का लकड़ी के का हल होता है, लोहे का उसमें फाल होता है, उसमें सभी सोने के बने और उनकी पत्नी और महिलाओं के साथ में उसको खींच रही है और ये मुट्ठी पकड़े हुए हैं पीछे से, और देवता ऋषि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, करते करते थोड़ा सा भी हल चला ही था, इतने में हल रुक गया, किसी चीज में वो अड़ गया, जब अड़ गया तो माने जैसे ये तो चल नहीं रही, स्त्रियां महिलाएं खींच नहीं सकी, जब अड़ गया तो उसमें ऋषि ऋषि सभी लोग आ गए और सबने मिलकर के उसको जोर से खींचा, उसमें उस फाल से जो नीचे का खेत जोतता है उसे एक खड़ा निकला, और खड़ा वो थोड़ा सा टूट गया, उसमें सुंदर एक कन्या निकली, बड़ी खूबसूरत जैसे कमल के फूल खिल रही हो, राजा जनक ने बड़े प्रेम से उसको अपनी गोदी में ले लिया और सुनाने की गोदी में दे दिया जी, हम लोगों को तो पुत्र है कन्या नहीं, अच्छा ये हमारी पुत्री है, पुत्र से भी अधिक प्यारा उनको दे दिया। तब से सीता जी का ये जन्म हुआ। सीता कहते हैं उसको, जो कि आगे हल के वो नोकीला सा रहता जिससे कि वो जमीन खुदी जाती है, उसको सीता कहते हैं, इसलिए सीता के नाम पर इनका नाम पड़ गया सीता। सीता जी बड़ी होने लगी धीरे 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 धीरे। जब वो किशोरी हुई 12 वर्ष की, महाराज जनक के पास में एक धनुष था शिव जी का दिया हुआ, तो वो वहीं पर रखा था। एक बार कहीं महाराज ये जा रहे थे जनक जी कहीं बाहर, मुझे बेटी आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इनकी पूजा कर देना। महाराज जनक जी कैसे पूजा करते थे, अपने हाथों से ही गोबर से चारों तरफ की जमीन को लीप देते और उसको फूल इत्यादि से उनकी पूजा, चंदन कंध इत्यादि देते और उसको धूप दीप इत्यादि देते, धनुष को उठाते नहीं थे, उठता भी नहीं था, बहुत विशाल था। सीता जी ने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वो गई और गोबर इत्यादि लेकर के वहाँ गई और सहज रूप में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, जैसे एक कमल के फूल को उठाते हैं, और उसको नीचे ऊपर चारों तरफ से जमीन को लीप करके और रख दिया और फिर चंदन पुष्प इत्यादि से धूप दीप आरती से उसको पूजा, चारों तरफ खुला हो गया, जैसे जिसको बड़े बड़े महारथी लोग नहीं उठा पाते, ये छोटी सी बालिका ने इसको उठा लिया
एक हाथ से
भी एक हाथ से। महाराज जनक जब लौट करके आए तो सुने तो बड़े प्रसन्न, वही तो लड़की तो कोई अद्भुत है, ये साधारण